शांति। आज के सायंकालीन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं आदरणीय राजयोगी भ्राता राजू भाई जी। एक हाथ हिलाकर भ्राता जी का स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। आप यूपी की धरनी से निकले ईश्वर के अनमोल रतन हैं। आपका यह बहुत बड़ा सौभाग्य रहा कि बाल्यकाल से ही आपको घर में ईश्वरीय वातावरण मिला, क्योंकि 1960 से ही आपके घर में ईश्वरीय गतिविधियां आरंभ हो गई। तो लौकिक और अलौकिक दोनों ही पढ़ाइयां उसी ईश्वरीय वातावरण में पढ़ते हुए बड़े हुए, और फिर 1971 में पहली बार मधुबन धरनी में कदम रखा। दिलो दिमाग पर इस धरनी की छाप पड़ी, और फिर इससे दोबारा 1972 में जब आए तो आते ही अपना जीवन समर्पित किया। 1972 से लेकर आज दिन तक यहाँ रहते हुए आप विविध सेवाएं करते आ रहे हैं। 1976 में बाबा ने आपको एक विशेष सेवा के लिए निमित्त बनाया। आप समझ सकते हैं वो कौन सी सेवा होगी? मुरली की, जिस कारण से ही आप पूरे ब्राह्मण परिवार में किस नाम से प्रसिद्ध हैं? मुरली वाले राजू भाई। जो मुरलियां सिंधी में हुआ करती थी उसे हिंदी में टाइप करना और सभी सेवा केंद्रों पर पोस्ट करने की सेवा में सहयोग देना, ये आपको सेवा मिली जो आज दिन तक बखूबी आप उसको निभा रहे हैं। इसके अलावा जो हम पत्र पुष्प पढ़ते हैं वो भी आप ही तैयार करते हैं। अव्यक्त मूल्यों के आधार से छोटी छोटी पुस्तिकाएं जो आप तैयार करते हैं, और साथ साथ मम्मा, बाबा, दादी आदि की विशेषताओं पर भी आप पुस्तकें तैयार करते रहते हैं, जिनसे हम सबको बहुत फायदा होता है। इतना ही नहीं, आप हमारे जो ग्रामीण विकास प्रभाग है उसके वाइस चेयरपर्सन भी है, और जिस विभाग के द्वारा, प्रभाग के द्वारा शाश्वत यौगिक खेती का बहुत सुंदर एक नई कंसेप्ट कहें, अवधारणा कहें, किसानों को दी गई है, जिससे बहुत अच्छी फसल हो रही है। इसके साथ साथ मुरलियों पर आधारित आपने एक टॉक शो किया है अमूल्य रतन के नाम से, जिसके करीब 1300 एपिसोड आप पूरे कर चुके हैं, और आप सभी उसको देखते होंगे, आपको लाभ होता होगा। यहाँ तक कि मधुबन में दादियों के पास जो पत्र आदि आते हैं वे भी आप ही देखते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं। मधुबन के अंदर फोटोकॉपी, स्टेशनरी आदि, हिंदी टाइपिंग, ये सब भी आपके डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आते हैं। और चूंकि मुरलियों से आपका बहुत घनिष्ठ संबंध है, सेवा ही आपकी वो है, तो दिलो दिमाग में वो मुरलियां ही घूमती रहती है। बहुत अच्छा उनका मनन चलता है, चिंतन चलता है। तो पूरे भारत भर में, तो क्या विदेश में भी, अब बाबा की मुरलियों पर आधारित ज्ञान योग की खुशबू फैलाने, भट्टियां कराने जाते ही रहते हैं। और आज हमारे बीच में है, बहुत सुंदर विषय दिया है भ्राता जी को कल के वरदान के आधार पर, पुरुषार्थ में रमणीकता अनुभव करने की विधि। तो सुनते हैं भ्राता जी से, आदरणीय भ्राता जी।
ओम शांति। सभी ने मधुबन की इस पावन धरनी पर 3-4 दिन रहकर प्रभु मिलन का अच्छा आनंद लिया है। अच्छे वातावरण के बीच बाबा के घर में तपस्या का चांस मिलना, ये भी बहुत बड़ा भाग्य है। सबको अच्छा लग रहा है ना? बहुत दूर से आप बाबा के घर में आए हैं और मैं समझता हूं सभी को शायद ये पहला चांस ही मधुबन में रहने का मिला होगा। पहला चांस लगता है। बाबा ने हम सबको पुरुषार्थ के लिए भिन्न भिन्न नई नई विधियां सिखाई हैं। कई बाबा के बच्चे एक ही तरह का पुरुषार्थ करते हैं और कुछ समय करते करते थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं। इसलिए कल बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया, पुरुषार्थ में रमणीकता और नवीनता कभी थकाएगी नहीं, बोर नहीं करेगी। तो आप सभी पुरुषार्थ तो कर ही रहे हैं। क्या है पुरुषार्थ? पुरुषार्थ क्या करते हैं? जी क्या पुरुषार्थ करते हैं? याद में रहने का। वास्तव में पुरुषार्थ शब्द के अंदर ही पुरुषार्थ है। पुरुष आत्मा, आत्मा को पुरुष कहते हैं, इस रथ पर विराजमान है। जितना समय हो सके अपनी आत्मिक स्थिति में रहना, इस रथ का आधार लेना और इससे न्यारा हो जाना, वास्तव में यही यथार्थ पुरुषार्थ है। क्योंकि बहुत समय से हम सभी इस शरीर के साथ पार्ट बजाते बजाते फुल बॉडी कॉन्शियस हो गए, देहाभिमानी बन गए। अब आत्मा अपने स्वधर्म को पहचाने, अपने स्वरूप में स्थित रहे, कार्य व्यवहार में आते हुए शरीर का आधार ले, करावन हार बन करके कर्म कराए और फिर न्यारी हो जाए, यही वास्तव में पुरुषार्थ है। तो बाबा ने कहा बच्चे पुरुषार्थ में नवीनता और रमणीकता चाहिए। क्योंकि कई बार हम सभी पहले दिन जो हमारी टीचर्स हमें गाइड करती हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करो, आत्मा शांत स्वरूप है, शांति धाम की रहने वाली है, शांति के सागर की संतान है, जिस तरह से कमेंट्री मिलती है, जिस तरह से हमें गाइड किया जाता है, उसी तरह से हम पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन उसमें रोज कुछ नवीनता हो, कुछ रमणीकता हो, वो अपने अपने बुद्धि के प्लान अनुसार हम कर सकते हैं। और बाबा कई बार मुरलियों में बात सुनाते हैं और खास करके जब बाबा के पास विदेशी बच्चे आए तो विदेशियों को कुछ रोज नया चाहिए। इसलिए बाबा ने उन्हें कहा बच्चे एक जैसा पुरुषार्थ नहीं करो, एक जैसा करेंगे तो बोर हो जाएंगे, इसलिए रोज नए नए ढंग से कुछ न कुछ युक्ति करो। कभी बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो, बातें करो आपस में, कभी ज्ञान का अच्छा चिंतन करो, कभी कोई एक अच्छा सा सामान लेकर के उस सामान पर अभ्यास करो, कभी फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, कभी बीज रूप स्थिति का अनुभव करो, निराकारी दुनिया में जाओ। तो जितना वैरायटी करोगे उतनी उसमें नवीनता लगेगी और उसमें रमणीकता रहेगी। लेकिन जब हम एक जैसा करते हैं तो रमणीकता खत्म हो जाती है। और रमणीकता के लिए बाबा ने कई बार कहा है बच्चे ब्रह्मा आपकी माँ है, चंद्रमा है, कभी चंद्रमा की चांदनी के नीचे चले जाओ, कभी ज्ञान सूर्य के पास ज्ञान सूर्य की किरणें लो, कभी ज्ञान सागर की लहरों से लहराओ, सागर भी है। बाबा की महिमा में तीन शब्द विशेष आते हैं, एक सूर्य है, एक सागर है और एक सीड है, बीज है। ये तीनों स्वरूपों में बाबा को अगर हम रोज याद करते हैं तो इन तीनों की अलग अलग विशेषताएं अनुभव होने लगती हैं और भी बड़ी रमणीकता आती है। ज्ञान सूर्य है तो सूर्य की किरणें आत्मा को शक्तिशाली करती हैं, परिवर्तन करती हैं। सूर्य क्या कर रहा है, इस स्थूल सूर्य से, इस प्रकृति के सूर्य से भी भेंट कर सकते हो। सूर्य की किरणें सवेरे सवेरे जब निकलती हैं, अगर उनकी किरणों का उस आनंद हम लेते हैं, उस किरणों के नीचे चले जाते हैं। आजकल सभी डॉक्टर राय देते हैं कि सवेरे सवेरे की शीतल किरणों के नीचे बैठो, कम से कम 20 मिनट आधा घंटा, तो आपको विटामिन डी मिल जाएगी, शरीर की हड्डियां आपकी मजबूत हो जाएंगी। सूर्य की किरणें निकलते ही चारों तरफ अंधेरा खत्म होता है, प्रकाश छा जाता है, रोशनी आ जाती है, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलने लगती है। कई पौधे हैं जो रात को कार्बन देते हैं, कुछ हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं, दो चार पौधे ऐसे हैं, लेकिन अधिकतर लोग कहते हैं रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन वो खुद लेते हैं, कार्बन देते हैं। लेकिन जब सवेरा होता है, सूर्य उदय होता है, तो सब पेड़ पौधे वनस्पतियां सब ऑक्सीजन देना शुरू कर देती हैं सूर्य की किरणें पड़ते ही। अब वो सूर्य की किरणें थोड़ा सा तेज होती हैं तो जहां पर कोई कीचड़ होता है, गंदगी होती है, उसको समाप्त करता है, सुहा कर देता, सुखा देता है। और तेज किरणें होती हैं सागर पर पड़ती हैं जाकर के, वो सागर के पानी खारे पानी को उड़ा करके मीठे बादल के रूप में हमें पानी पीने को मिल जाता है। बहुत बड़ी सेवा करता है सूर्य। अगर सूर्य कुछ दिन के लिए निकलना बंद हो जाए तो क्या होगा, ये मानव सृष्टि खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी शक्ति है सूर्य की, इसलिए प्रकृति को, सूर्य को देवता कहते हैं। लोग सूर्य को सवेरे सवेरे प्रणाम करते हैं, उसको जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं देवता कहकर के। लेकिन बाबा हमारा ज्ञान सूर्य है और ज्ञान सूर्य बाबा की किरणें लो, सवेरे सवेरे उठ करके सब प्रकार की विटामिन मिल जाएगी, जो कमियां हैं जो कमजोरियां हैं सब समाप्त हो जाएंगे। इसलिए सवेरे सवेरे लेते हो ना, सभी उठते हो कि नहीं, यहां तो उठते होंगे, घरों में पता नहीं, घर में भी उठते हैं, अच्छी बात है, बाबा ने सवेरे उठना तो सिखा दिया है। नहीं तो कई ऐसे हैं जो सूर्य दर्शन ही नहीं करते, तो बाबा ने हम सबको सूर्य उदय के पहले उठ करके तैयार हो करके सूर्य की, इस सूर्य की भी और ज्ञान सूर्य की किरणें लेना सिखाया है। और फिर आप लोगों ने एक बात देखी होगी, आपके पास नजदीक में सागर नहीं है, लेकिन अधिकतर सागर में लोग स्नान करते हैं और विशेष करके जो बीच होते हैं ना, विदेशी लोग आते हैं, खास गोरे लोग, और सागर में पहले स्नान करते हैं और फिर धूप में लेट जाते हैं। क्यों लेटते हैं, उनकी चमड़ी थोड़ी मजबूत हो जाए, इसलिए उसकी एक पद्धति रखी है, नियम बनाया है। पहले सागर में डुबकी लगाया, फिर उसके बाद रेत है बाहर, उस पर लेट गए, सूर्य की किरणें आई, उनकी चमड़ी मजबूत हो गई, जो रोग हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो बाबा भी कहते हैं बच्चे कभी सागर में लहराओ और कभी कभी सागर के तले में चले जाओ। बाबा ज्ञान सागर है, हर चीज का, हर गुण का, हर शक्ति का सागर है, लेकिन एक जैसा करोगे तो बोर हो जाओगे, रमणीकता से करो। कभी ज्ञान सागर की लहरें कितनी अच्छी बाबा ने मुरली चलाता है तो साकार बाबा की मुरली तो ऐसे ही लगती है जैसे सागर की लहरें आ रही हैं, अभी अभी एक बात, अभी अभी दूसरी बात, अभी अभी तीसरी बात। लहराओ, मनोरंजन का अनुभव करो। वाह बाबा क्या आप पढ़ा रहे हो, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हो, क्या नहीं सुनाया बाबा ने। मैंने तो लौकिक में कोई ऐसी पढ़ाई नहीं की, लेकिन भगवान की मुरली वही हमारी पढ़ाई है, और उसने सब कुछ पढ़ा दिया। एक एक बच्चे को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ, स्वदर्शन चक्रधारी, नॉलेजफुल, क्या है, कितना पढ़ाया है ना नशा माताओं को है कि नहीं। भगवान हमारा शिक्षक, कोई इंसान थोड़ी है, और वो हमें ज्ञान सागर बनकर के ज्ञान की लहरों से लहराता है। सवेरे सवेरे ज्ञान सागर की लहरों से लहराओ, और उसका मनन करते मंथन करते करते उसके सागर के तले में चले जाओ। कोई डुबकी लगाना जानता है सागर में, लगाई है किसी ने? कोई कोई एक आधा हाथ उठा रहे हैं। लेकिन सागर में अगर कोई डुबकी लगाना जानता, अगर तैरना जानता है, तो सागर की लहरों का वो अच्छा आनंद लेता है। और अगर ऐसे बेचारा चला जाए और तैरना ना आता हो, तो लहरें उसको बहा ले जाती हैं, डुबो देती हैं। लहरों में तैरना, लहरों से खेलना, उसका भी एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस चाहिए, अभ्यास चाहिए। तो बाबा की मुरलियां सागर की लहरें आती हैं, लहराओ, मनोरंजन का अनुभव करो। कभी बाबा सतयुग की सैर कराता है, कभी भक्ति की सैर कराता है, कभी विश्व की सैर कराता है, कभी तारा सितारा मंडल की सैर कराता है, कभी परम नाम ले जाता है, कभी सूक्ष्मतन ले जाता है, लहराता है ना, ऐसे लहराओ इनमें। और कभी कभी एकदम ऐसे बैठ करके मनन चिंतन करते करते बाबा कहता मनन करो और मगन हो जाओ, समा जाओ, अंदर चले जाओगे, डीप चले जाओगे, तो उस सागर में भी जो अंदर जाना जानते हैं, डुबकी लगाना जानते हैं, तो सागर रतन देता है। सागर से कुछ न कुछ अच्छे रतन लेकर के आते हैं। सागर में कितनी भी चीजें डालो, नदी से नालों से बह करके कितना भी कीचड़ उसमें चला जाए, लेकिन सागर अंदर नहीं रखता है, क्या करता है, उसकी लहरों से वो सारा किचड़ा साइड कर देता है, अंदर नहीं लेता। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शिव बाबा ज्ञान सागर, पवित्रता का सागर, प्यार का सागर, सुख का सागर, आप कुछ भी उसको दो, उसको सुना दो कमी कमजोरी संस्कार, सुनाते हो, सुना दो बाबा को, दे दो अपना किचड़ा बाबा को, बाबा मेरे पास अभी तक ये संस्कार है, ऐसा स्वभाव है, ऐसी आदतें हैं, बाबा को दे दो, बाबा अपने अंदर नहीं रखेगा। और सबसे बड़ी बात है बाबा किसी को सुनाएगा नहीं, दिलवाला है, दिल लेगा, लेकिन ऐसे नहीं हमने बाबा को सुनाया कहीं लीक ना हो जाए, मेरी बात कहीं फैल ना जाए। आत्माओं में तो विश्वास करना थोड़ा आजकल मुश्किल हो जाता है, किसी को बता दो पता नहीं वो समा पाएगा या नहीं, कहाँ की कहाँ कर देगा जाके, बात का बतंगड़ बना दे। इसलिए बाबा को सुनाते हो, बाबा को अपने दिल का हाल सुना दो। ये दिल वाला है ना, ये कुटिया जो बाबा की, ये दिल वाला की कुटिया है। साकार में भी जब बच्चे आते थे ना, तो बाबा से पर्सनल मिलते, व्यक्तिगत एक एक मिलता था। मैं जब मधुबन में आया तो साकार बाबा व्यक्त हो चुके थे 71 में, और बाबा अकेले अकेले बच्चों से मिलते थे, अव्यक्त रूप में गुलजार दादी के तन में आते थे। तो जो बाबा की गद्दी है ना कमरे में, देखिए ना गद्दी, उसी गद्दी पर गुलजार दादी बैठती थी और बाबा आ जाते थे। और हम लोग बहुत उस समय मधुबन में 25-30 भाई, 15-20 बहनें, 40-50 का परिवार था। और अगर कोई पार्टी आती थी 10-15-20 की, तो 100 हो जाते होंगे लगभग, इससे अधिक नहीं। तो पहले तो पार्टी वालों को मिला लेते थे, वो मिलके जब चले जाते तो मधुबन वालों का नंबर रहता था रोज ही, जब भी बाबा आ गए तो मधुबन वाले अकेले अकेले मिलते थे। क्या करते होंगे, जब मैं पहली बार आया तो पहली बार तो मेरे लौकिक बहन मेरे को बाबा के सामने लेके गई परिचय देने के लिए, और बाबा बड़ा मुस्करा दिया, एक ही शब्द में जवाब दिया, बाबा जानता है, सुना नहीं। लेकिन दूसरी बार मैं बाबा के सामने अकेले गया तो बाबा को अपनी सब जन्म पत्री सुनाते थे, इस जन्म में क्या किया, कुछ ऐसी भूल हुई है, कोई ऐसे कर्म हुए हैं। तो बाबा ऐसे चुपचाप सुनता रहता था, मुस्कराता था, सच्चाई देखता था, बच्चे सच्चे कितने, जानता तो सब कुछ है वो, लेकिन हम कितने सच्चे हैं बाबा के साथ, तो बाबा को पता चलता है, कुछ छिपाते तो नहीं है, कोई इधर की बात उधर तो नहीं करते हैं। तो सभी बहुत प्यार से बाबा को अपनी जन्म कहानी सुनाते थे, फिर बाबा उसको विधि बताते थे, युक्ति बताते, कैसे इसको भूल जाना, इसको याद नहीं रखना, इसको फुल स्टॉप लगा देना। फिर बाबा दृष्टि बहुत देर तक देते थे, फिर अपने हाथ से टोली खिलाते थे, फिर कहते थे अच्छा कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, तो एक एक बच्चा बाबा से कम 20 मिनट 25 मिनट बैठे रो रहा बातें। तो बाबा के तिलवाला के घर में आए हो, भले साकार में अभी रूप नहीं है बाबा का, लेकिन बाबा की इस धरनी के कण कण में बाबा है, अनुभव होता होगा। बाबा की कुटिया में जाके ऐसे बैठ जाओ, जो दिल की बातें हैं सुना दो। अगर मान लो कहते हो पता नहीं बाबा सुनता या नहीं सुनता, मेरे अंदर ही रह जाए, तो एक कागज पर लिख करके अपने दिल की बातें, माँ भंडारी एक रखी है जिसमें लिखा पेपर, पत्रों की राय, पत्रों का बॉक्स, उसमें डाल दो, कोई पढ़ेगा नहीं, कोई नहीं पढ़ता है, उसको उठा करके बाबा की अग्नि हवाले कर देते हैं, बाबा पढ़ लेता है, बाबा जानता है। तो ऐसे कुछ नवीनता से सागर की लहरों में लहराना, सागर को अपना सब कुछ समर्पित कर देना और उसकी गहराई में जाकर के अच्छे अच्छे रतन, वो रतन नहीं स्थूल, ज्ञान का रतन, ज्ञान चिंतन, ज्ञान मनन से जो मक्खन निकलता है वो आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। तो जब आत्मा एकदम सागर में डूब जाती है, तले में चली जाती है, तो रतन मिलते हैं अच्छे अच्छे, बहुत नए नए प्लान्स, नए नए विचार आते हैं। ज्ञान रत्नों की जैसे खान मिल जाती है, आत्मा को भरपूर हो जाती है, लेकिन उसके लिए बहुत अच्छी सागर की या कहीं भी डुबकी लगाओ, तालाब में भी लगाओ, तो क्या करते हैं, नाक और कान दोनों को बंद करते हैं, बंद करके फिर डुबकी लगाते हैं। तो इस सागर में भी डुबकी लगाने के लिए कोई व्यर्थ बातें नहीं सुनना, इधर उधर की हवा नहीं लेना, उस वाइब्रेशन से भी दूर रहना। जब आप बिल्कुल अपने नाक कान मुख बंद करके, आंख बंद करके फिर जाकर सागर में जाओगे तो रतन मिलेंगे, और काफी समय तक उस सागर के तले में रह सकोगे, नहीं तो कुछ समय के गए फिर ऊपर आ जाओगे, और जब तक ऊपर आए और नीचे गए वो भी मजा नहीं आता। बहुत समय तक सागर के तले में बैठ गए, योग करो ना, अभ्यास अभी हम करेंगे आधा घंटा, कुछ समय के लिए एकदम ऐसे तले में चले जाओ, कोई जैसे संकल्प नहीं, शीतलता का अनुभव है, गहरी शांति का अनुभव है, तले में क्या है, ऊपर कितनी भी हलचल हो लेकिन तले के अंदर बिल्कुल शांत है, शीतल है। तो उस गहराई का अनुभव करना योग में, उसके अनुभूति करके जाना, उससे बड़ा आनंद मिलता है, बड़ा सुख मिलता है, ये सब संकल्प शांत हो गए, सब प्रकार की हलचल शांत हो गई। तो एक तरफ ज्ञान सूर्य है, दूसरी तरफ ज्ञान सागर है, और तीसरी तरफ पूरे वृक्ष का बीज है, बीज से पूरे वृक्ष को शक्ति मिलती है, बीज से जल मिलता है, बीज अगर ठीक नहीं है तो वृक्ष की उत्पत्ति ठीक नहीं होती। आज पूरे वृक्ष को चलाने वाला बीज रूप चैतन्य बीज, कई बार बाबा मिसाल देते हैं, अगर वो बीज भी चैतन्य होता तो बताता ये वृक्ष जो है मेरे से कैसे निकला, इसकी आदि क्या है, इसका मध्य क्या है, इसका अंत क्या है। हमारे बाबा ने हम सबको चैतन्य होने के नाते, बीज रूप होने के कारण इस पूरे वृक्ष की आदि मध्य अंत, फिर कैसे वृक्ष फिर से रिपीट होता है, उससे कलम कैसे लगती है, फिर कलम से कैसे नया वृक्ष तैयार होता है। बीज ने इस पूरे वृक्ष का ज्ञान दिया है। और हम बच्चों को कहा है, बच्चे तुम बीज रूप बाबा के साथ बैठ करके पूरे वृक्ष को सकास दो, क्योंकि इस वृक्ष के तुम पूर्वज हो। इसलिए आप देखेंगे जो कल्प वृक्ष का चित्र है, जड़ों में ब्रह्मा बाबा, मम्मा और कुछ अनन्य बच्चे साथ में बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं एक है कपल मुनि, ब्रह्मा बाबा कपल है ना, जोड़ा है, वो कपल मुनि है। और कहते हैं कपल मुनि के पास एक गाय थी जिसका नाम था कामधेनु। वो गाय तो वास्तव में जानवर नहीं थी, ये हमारी मम्मा है, कामधेनु माँ है, जिस कामधेनु माँ की बच्चों की सब आशाएं पूरी हो जाती, कोई भी कामना नहीं रहती। अगर कोई बच्चा सपूत है, आज्ञाकारी है, तो कामधेनु माँ प्रसन्न होकर के उसकी सब मनोकामनाएं पूरी कर देती। और जिसका बाप कपल मुनि है, खुश ऋषि है, तपस्वी है, अपने बच्चों को कहता है बच्चे आओ मेरे साथ तपस्या करो। तो हम सभी माँ बाप के बीच में बैठ जाए, कभी कभी ऐसा अभ्यास करना, साकार में मम्मा को ऐसे नहीं, लेकिन बाबा ने कन्याओं माताओं को संभालने के लिए मम्मा को रखा, कहता है तो मेरी बेटी है, माँ तो मैं हूं, ब्रह्मा माँ। कल बड़े प्यार से कह रहा था ना, मुझे सजनी चाहिए, बिना सजनी के मैं बच्चे कैसा पैदा करूं, लेकिन मैं बिना शादी के पैदा कर लेता हूं। कितनी रमणीकता से मुरली चलाता है रमणीकता की नहीं, अब पुरुषार्थ में बोट हो जाओ आप। अरे बाबा क्या कह रहा है, किस भाव से कह रहा है, सुनो, मनोरंजन का अनुभव करो, रमणीकता का अनुभव करो। कभी भी मुरली बोर नहीं करेगी, नहीं तो मुरली से बोर हो जाते, योग से बोर हो जाते। यही कहना है दीदी, 5 मिनट योग लगा फिर बुद्धि भटक गई। अरे तुम शांत स्वरूप होके बैठेगा, मन को शांत करने की कोशिश किया, थोड़ी देर शांत हुआ और शांत होते होते क्या हुआ, नींद आ गई। कभी बाबा से प्यार से बातें करो, कभी साजन के रूप में करो, कभी बच्चा बना के करो, कभी सतगुरु बना के करो, कभी शिक्षक के रूप में करो, कभी बाप रूप में, कभी माँ के रूप में, बातें तो करो। आज दोस्त अगर मिल जाते हैं, घंटों बीत जाते हैं, बातें नहीं पूरी होती। अब बाबा कहता है मैं बच्चों का खुदा दोस्त बन जाता हूं, बहुत रमणीकता से बातें करो। दोस्त को तो सारे दिल की बात सुना दी जाती, माँ बाप से भले छिपा ले कोई, दोस्त से नहीं छिपाता। लेकिन आजकल के दोस्त तो खतरनाक है, ध्यान रखना। एक बार हमारे जगदीश भाई ने एक लेख लिखा था, भगवान तो मुझे मेरे दोस्तों से बचाना, मैं अपने दुश्मनों से निपट लूंगा, क्योंकि दोस्ती बहुत नुकसान कर रही है आजकल। आजकल की दोस्ती, जब तक आपके पास कुछ है, पैसा है, शक्ति है, सामर्थ्य है, तब तक दोस्ती है, और उसके बाद आपका लुट करके सब चले जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। और अपना संग का रंग ऐसा लगाएंगे, कोई बीड़ी पीने वाले का, सिगरेट पीने वाले का, कोई ऐसे गलत संग, गलत काम करने वाले का संग कर लो आप। आप कितने अच्छे कुल के हो, कितने अच्छे संस्कार वाले कुलीन परिवार के हो, लेकिन उनके संग में गए तो धीरे 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 अपना रंग लगा देंगे। तो ऐसी दोस्ती से बच के रहना, नहीं तो कहते हैं संग जो है, अगर गलत का संग कर लिया तो संग तारे को संग डुबोए। एक संग है जो अच्छे व्यक्तियों का किया, शुभ चिंतन वालों का किया, जो ज्ञान चिंतन, परमात्म चिंतन, ऊंचे विचारों में रमण करते हैं, उनके साथ बैठोगे, बात करोगे, वो कुछ न कुछ पुरुषार्थ की अच्छी बातें सुना करके आपको आगे बढ़ाएंगे। और अगर ऐसे कमजोर के संग में बैठ गए, भाई बाबा की मुरली तो पता नहीं क्या है, समझ में तो नहीं आती है, बाबा तो कहता है ये होगा या नहीं होगा, और भी निश्चय बुद्धि को संशय बुद्धि बना देंगे। तो इसलिए ध्यान देना, कभी भी कमजोर का संग नहीं करना हो, और कभी कोई अगर परचिंतन प्रदर्शन करने वाला हो, ये बहनें ऐसी हैं, फलाना ऐसे है, वहां ऐसे है, मधुबन में ये होता, कई बार आजकल ना उल्टी न्यूज सुन लेते हैं और उस उल्टी न्यूज को सुन करके फिर आपस में चर्चा करते हैं, मोबाइल ऐसा साधन मिल गया जो इधर से उधर न्यूज को फैलाने काम करते हैं, उससे बहुत बड़ा बोझ चढ़ता है। हो सकता है मान लो किसी ने कोई गलती की, गलती करने वाला सुधर जाए, और जिसने देखा सुना वातावरण बनाया, बात फैला दी, वो बात एक के कान से दूसरे के, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे तक गई, वो बात इतना विस्तार कर गई, जो एक कहावत है हिंदी में कहते हैं, नेपाल में भी कहते होंगे, कहते हैं खोदा पहाड़ निकली चुहिया वो भी मरी हुई। कई बार कोई कोई बातें हैं ना इतनी विस्तार करके पहाड़ बना देते हैं, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, यहां ऐसा होगा, इस सेंटर में ऐसा हुआ, उस सेंटर में, बात कुछ भी नहीं होती, छोटी सी बात ईर्ष्या के कारण, अनुमान के कारण, कोई वैर विरोध के कारण, छोटी सी बात एक को सुनाई, देखो क्या कहते हैं पता है, मैं तुमको ही सुनाती हूं, तुमको ही कह रहा हूं, तुम दूसरे को नहीं कहना, तुमने अपने पेट में नहीं रखा वो कैसे रखेगा, तुम अपने में समा पाया तो दो समा लेगा क्या, फिर वो दूसरे को कहता है देखो भाई मैंने सुना है लेकिन मैं तुमको सुनाता हूं, तुम दूसरे को नहीं सुनाना, वो बात पचती नहीं है अंदर, और एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी, कमजोरियां इतनी फास्ट गति से फैलती हैं, ये कीटाणु जो है, ये जो जर्म्स हैं, वो एक में लगता है तो हजार को इन्फेक्शन फैला देता है। जैसे आजकल फ्लू की बीमारी, आंखों का फ्लू निकला है, बहुत ज्यादा फैल रहा है, एक को हो गया अगर देख भी लिया तो दूसरे तक हो जाता है। इसलिए हम सबको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बाबा को खुदा दोस्त बनाओ, बाबा से बातें करो, बाबा की सुनो, बुद्धि से बाबा से बातें करो, लेकिन साकार में अगर कोई ऐसे कमजोर चिंतन परचिंतन करने वाले हैं, पर दर्शन करने वाले हैं, ज्ञान के बारे में, यज्ञ के बारे में, बड़ों के बारे में उल्टा बोलने वाले हैं, तो उनसे हाथ जोड़ लो, उनके संग में कभी नहीं जाना, नहीं तो आपका योग टूटेगा, आप किनारे हो जाएंगे, आपको जो मिल रहा है बाबा से उससे वंचित हो जाएंगे। इसलिए बाबा को खुदा दोस्त बना करके अच्छी अच्छी बातें करो, चिट चैट करो, पत्र लिखो बाबा को। कभी खुदा दोस्त को पत्र लिखा है आप लोगों ने? लिखा है नहीं? बहनों ने लिखा है कभी? बहुत प्यार से पत्र लिखो, अंदर से भावना से लिखो, बाबा आप मिल गए, आप कितने अच्छे मेरे दोस्त हो, आप मेरी कितनी सब दिल की बातें सुनते हो, कितना हाल देते हो, क्या से क्या बना दिया, ऐसे पत्र लिखो बहुत प्यार से, बहुत स्नेह के आंसू आ जाएंगे, क्या थे क्या बन गए, बाबा आपने मुझे कीचड़ से निकाला, गंदगी से निकाला, आज कितने लोग शिव बाबा के भक्त हैं, कितनी भक्ति कर रहे हैं, उनको भगवान नहीं मिला और हमने जिस जन्म में भक्ति नहीं की हमको मिल गया, हम तो पुराने भक्त हैं, ऐसे लिखो बाबा को, बाबा हम तो आपके बहुत पुराने भक्त हैं, हमने बहुत आपकी भक्ति की है, अव्यभिचारी भक्ति की है, एक के सिवाय हमने और किसी को पूछा ही नहीं, माना ही नहीं, मैं तो आपका वो बच्चा, वो भक्त बच्चा हूं, अभी आप मिल गए हो, भक्त से मुझे बच्चा बना लिया, ज्ञान दिया, इससे सदगति हो जाएगी हमारी, हमें कितना दुखों से, बंधनों से, बुराइयों से, व्यसनों से आपने बचा लिया, अपनी गोद में बिठा लिया, कितना भाग्य है, कितना अच्छा। ऐसे पत्र लिखो बाबा को, दिल से लिखो, ये रमणीकता का पुरुषार्थ है, सूखा सूखा ज्ञान नहीं है। कई लोग बैठते हैं ऐसे योग में, पता नहीं, एक भाई हमारा योग करता था, एक बार गुलजार दादी आई, कहती है शिव बाबा को लगता है नीचे गिरा देगा ऐसे देखता था, ऐसे टक लगा करके ऊपर। अरे रमणीकता से बाबा से बातें करो, रूढ़ियान करो, शक्ति लो, सकास लो, लो और दो, जैसे सूर्य की किरणें आती हैं, कांच पर आ गई, कांच साफ है, स्वच्छ है, तो उस कांच के द्वारा वो सूर्य की साधारण किरण कितनी गर्म होकर के दूसरे तक जाती है और वहां आग पैदा कर देती है। बाबा की किरण आई शांति की, पवित्रता की, सुख की, वो किरण यहां आई और यहां बहुत पवित्र है, मनसा शुद्ध है, कोई के प्रति ईर्ष्या द्वेष नहीं, नफरत नहीं, ये कांच साफ है। और साफ कांच के ऊपर शिव बाबा की किरणें आएंगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी, उसके संस्कार चेंज हो जाएंगे, उसके बुरे कड़े कर्म बंधन टूट जाएंगे, परिवर्तन आ जाएगा। मनसा सेवा क्या है? लोग पूछते हैं कैसे करें, हद में नहीं करो भाई, हमने अपनी माँ को दे रहे, अपने बाप को दे, अपने संबंधी को दे, ये तो हद हो गई। बाबा कहता तुम बेहद में बैठ जाओ, जिसको लेना है अपने आप ले लेगा। सूर्य किसी को देने जाता है क्या? आती हैं किरणें, वो जाती हैं, दूर दूर तक फैलती हैं, और जिसको जो चाहिए उसमें परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाती है। किसी ने दीवार बना के रखी होगी तो क्या करे, सूर्य भी क्या करेगा। इसलिए हम सबको योग के प्रयोग करने हैं, योग ही नहीं लगाना, योगी नहीं बनो, प्रयोगी बनो। योग तो हम सबका है। आज थोड़ी सी कोई बीमारी हो गई, दर्द हो गया, परेशान होते रहते हैं, अरे बाबा की किरणें लो, ऐसे लो, और जहां दर्द है वहां पर फोकस कर दो, शांति की किरणें, शक्ति की किरणें, पवित्रता की किरणें जा रही हैं। लेकिन एकाग्रता बहुत चाहिए। कल मैं क्लास में कह रहा था, बाबा ने हम सबको योग के लिए पहले चार प्रकार की एकाग्रता सिखाई है। एकाग्रता नहीं है तो अनुभूतियां नहीं होती हैं, हठ नहीं है। अब बाबा ने तो भाई उस उम्र में बहुत अच्छी तपस्या की है, सीधा बैठना, 93 वर्ष की एज में बाबा ने कोई टेका नहीं लिया, टांग पर टांग चढ़ा के कमल पुष्प की तरह अर्ध कमल आसन में बैठ करके, लास्ट मुरली भी उसी आसन में सुनाई 18 जनवरी को, बाबा का जो पोज आप देखते हो बैठक। लेकिन आजकल तो सबको सोफा और कुर्सी मिले हैं, आराम से बैठते हैं। लेकिन आराम बैठो, लेकिन आराम में ऐसे ना हो आराम आ जाए। कभी कभी आराम में बैठ जाते हैं ना तो अमृत पीने लगते हैं, मुंह खुल जाता ऊपर। बहुत मस्त बैठो, खुशी से बैठो, आनंद से बैठो, लेकिन सुस्ती नहीं आनी चाहिए। सहज योग ये नहीं है कि सहज योगी बनते बनते अलबेले योगी बन जाओ। तो पहली एकाग्रता है शरीर की। आसन अच्छा लगाओ, जिस आसन में आराम से बैठ सकते हो, एक घंटा आधा घंटा जितना समय, उसी आसन में बैठ जाओ। एकाग्र शरीर है, जब शरीर एकाग्र हो जाता है तो उसके अंदर मन है, बुद्धि है, भावनाएं हैं, दिल है, भावनाएं, एक है विवेक, बुद्धि विवेक का काम करती है, मन एक संकल्प की रचना करता है और संकल्प के साथ भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये चारों चीजों की एकाग्रता है। संकल्प भी स्थिर है, कहीं भटक नहीं रहे हैं, हमारा दिमाग भी बहुत स्थिर है, बुद्धि भी भटक नहीं रही है, और हमारी दिल की भावनाएं, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, जिसको ढूंढ रहे थे, पाना था सो पा लिया। अब भावनाएं भी एकाग्र हो गई, तो मन, दिल, बुद्धि और शरीर, जब चारों एकाग्र हो जाते हैं तब बाबा की किरणें आना शुरू हो जाती है, शक्ति आने लगती है। अब वो एकाग्रता कुछ समय रहती है, फिर बाद में बुद्धि इधर उधर जाती है, भटक जाती है, उसको रोकना है। अब कई बार कहते कैसे रोकें, मारो नहीं। कई बार हम लोग कहते हैं मन को मारना नहीं है, दमन नहीं करना है, उसको सुमन बनाना है। मन सुमन बन जाए, दमन ना हो, अमन ना हो, लेकिन सुमन बने, और उस सुमन बनने के लिए अच्छे अच्छे विचार करो। कहते हैं कांटे को कांटे से निकाला जा सकता है। कईयों के संकल्प इतने फास्ट गति से चलते हैं, जो देखेंगे सोचने लगे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। और व्यर्थ की उत्पत्ति का कारण क्या है? प्रश्नों में उलझना। जो बहुत प्रश्न करता है ना, वो कभी प्रसन्नचित स्थिति में नहीं रह सकता। अगर प्रसन्नचित स्थिति में रहना है तो सब प्रश्नों से पार। बाबा आपने सब कुछ सुना दिया, क्या प्रश्न करना है। और इतनी प्रसन्नचित स्थिति से बाबा को याद करो व्यर्थ अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर व्यर्थ आ रहा है तो उसको समर्थ संकल्प, अच्छे अच्छे संकल्प से, कोई अच्छा सम्मान लेकर के, बाबा मैं तो आपके मस्तक की मणि हूं, मैं इस मस्तक में विराजमान एक चैतन्य मणि हूं, मैं आपके नैनों का नूर हूं, मैं आपके दिल का मालिक दिल तख्त नसीन हूं, मैं आपकी राइट हैंड भुजा हूं, मैं आपके साथ कंबाइंड शिव शक्ति हूं। सम्मान लो और सम्मान पर मनन करते करते उस स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब एक जैसा योग नहीं है, वैरायटी है, नवीनता है, और जहां वैरायटी और नवीनता है वहां रमणीकता है। कभी भी ऐसे नहीं लगेगा हम तो 15 मिनट बैठे लेकिन मन बुद्धि इधर उधर भटक रहा था, योग ही नहीं लग रहा था, बहुत मेहनत किया। लेकिन मेहनत क्या कर रहे हैं, मन को शांत करने की मेहनत कर रहे हैं। चलने वाली चीज को, भागने वाली चीज को बांध दोगे तो कब तक बांध के रखोगे, रुकेगा नहीं, रुकता है तो उसको मोड़ दो, उसको दिशा दे दो, लगाम हाथ में रखो, कहीं गिरा न दे, कहीं भटका न दे। घोड़ा है ना, कहते घोड़ा है, एक जगह में गया, एक भाई ने 2 घोड़े पाड़े थे, छोटे छोटे थे, बहुत प्यार से उनको बुलाया, बहुत जोर से इंग्लिश में आवाज दिया विदेश के अंदर, वो भाग करके बहुत दूर थे, चल रहे थे, आए भाग करके, कहते इनका वेलकम करो, माउंट आबू से आए, घोड़े को बोलता है, तो ऐसे करता है। तो हमने कहा तुमने तो बड़ी अच्छी ट्रेनिंग दी है घोड़े को, ये घोड़े पाले क्यों, इस पर बैठेगा क्या, सैर करेगा, वो व्यक्ति तो इतना बड़ा था, घोड़े छोटे छोटे थे। कहता नहीं इसके लिए नहीं पाले, बाबा कहता मन घोड़ा है। अरे ये घोड़ा जानवर हमारे कंट्रोल में रह सकता है तो क्या मेरा मन नहीं रहेगा कंट्रोल में। हमने कहा कैसे रहता है, ये कंट्रोल में कैसे आया। बहुत अच्छी तरह से उन्होंने कहा देखो इसको मैं सवेरे सवेरे बहुत प्यार से सहलाता हूँ, मालिश करता हूँ, इसको अच्छा अपने हाथ से दाना खिलाता हूँ, चारा खिलाता हूँ, तब ये मेरा कहना मानता है। अब हम इसको रोज मारते रहें, थप्पड़ मारें, तुम कंट्रोल हो जा, तुम रुक जा, तू नहीं भटक, क्यों हमको परेशान करता है, तो मानेगा क्या। प्यार करो ना, अरे तुम तो मेरा है साथी है, तुम तो मुझे भगवान से मिला सकता है, चल अभी वाहन बन करके चल, मधुबन की सैर करा ला, पोखरा में बैठे वहां बुटवल में बैठे, मन को भेज देना इधर मधुबन में, आएगा सारा सैर करा के चारों धाम की यात्रा करा देगा। कभी 4 धाम की यात्रा कर लो, कभी 5 स्वरूपों की यात्रा कर लो, मन इतना अच्छा साधन, इतना अच्छा वाहन, और उस वाहन को हम मारे बांध करके रख दें उसके, कहें तुम शांत रह जा, तुम बैठ जा, तुम क्यों भटकता है। अरे भटकने वाला दौड़ने वाला उसको खूब दौड़ाओ, लेकिन कहाँ दौड़ाना है वो आपके हाथ में, लगाम आपके हाथ में। इसलिए अच्छा चिंतन करो, मुरली का चिंतन करो, पहले ज्ञान का चिंतन करो, चिंतन से व्यर्थ चिंतन समाप्त हो जाएगा। क्यों रोज कहा जाता है भाई मुरली का क्लास में आकर के मुरली सुनो, मुरली तो सबके हाथ में, अपने घरों में पढ़ सकते हैं। अच्छा नहीं पढ़ेंगे कहेंगे मुरली तो वही है, लेकिन रोज नया नया होमवर्क, रोज नया चिंतन, जब संगठन में बैठते हैं तो और अटेंशन जाता है, उसी लक्ष्य से सुनते हैं। हमने ऑनलाइन में देखा, ऑनलाइन क्लासेज जब चल रही थी तो मेरी रोज 3-4 क्लास होती थी, मैंने देखा ये घर में बिना नहाए धोए बैठे हैं, वही नाइट ड्रेस में बैठे हैं, क्लास कर रहे हैं, कई माताएं अपना काम कर रही, भंडारे में काम कर रही हैं, क्लास कर रही हैं, झाड़ू लगा रही हैं, क्लास कर रही हैं, कोई क्लास है, स्टूडेंट लाइफ है क्या। अभी चलो वो समय था, रोका गया, लेकिन अभी तो फिर से खुला है। तो बाबा के स्थान पर जाना, उस पवित्र वातावरण में बैठना, एकाग्र होकर के मुरली सुनना, ध्यान से सुनना, उससे शक्ति मिलती है और उससे हमारे चिंतन में परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले योग के लिए या मनोरंजन पुरुषार्थ में मनोरंजन का, रमणीकता का अनुभव करने के लिए अपने रोज नए नए चिंतन में बुद्धि को लाओ, रोज नया चिंतन। और रोज चिंतन के लिए वरदान है, स्लोगन है, मुरली का सार है, कुछ न कुछ उसमें से अच्छी बात लेकर के उस पर चिंतन करो। क्या है ये स्थिति, कैसे स्थिति बन सकती है, इससे क्या लाभ होगा, अगर हमने इसका अभ्यास किया तो इससे और दूसरों की सेवा क्या होगी। अच्छा चिंतन चलेगा, चिंतन चलेगा तो व्यर्थ चिंतन अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए ज्ञान चिंतन व्यर्थ चिंतन को समाप्त करने का साधन है। और जो ज्ञान चिंतन करते करते मनन करते करते मगन हो जाते हैं वो योगी बन जाते हैं। उसके बाद फिर बाबा आपने हमें कहां से, कल बाबा ने कहा ना अपने भाग्य का चिंतन करो, प्राप्तियों का चिंतन करो, संगम पर कितना श्रेष्ठ भाग्य हमको बच्चों को मिला है, इतनी श्रेष्ठ पालना है, पढ़ाई है, भटकना बंद हो गया, धक्के खाना बंद हो गया, लोग क्या क्या कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए, कितनी लाइन में खड़े होते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, कितने व्रत और उपवास रखते हैं, और बाबा आप मुझे इसे सहज रीति से मिल गए जो हमारा भटकना बंद हो गया, हमारा जो धन इधर उधर व्यर्थ जा रहा था दान पुण्य में, इनके पीछे उनके पीछे, जहां जाओ वहां चढ़ावा वहां देना। अगर आज किसी मंदिर में जाओ और आप चढ़ावा न चढ़ाओ क्या होगा मालूम, क्या होगा कभी सोचा है क्या होता है? पता नहीं नेपाल में होता है या नहीं होता मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर भारत में कहीं मंदिर में गए जो पुजारी है उसकी नजर आपकी जेब पर ही रहती है, और अगर आपने नहीं चढ़ाया ना तो गालियां देना शुरू कर देता है, क्योंकि उसकी इनकम वही है। कई बार वो जो पूजा 5-6 घंटा करता है ना तो जितना चढ़ावा चढ़ता है वो उसका होता है। एक मंदिर की बात सुनाता हूं। एक इंदौर में मंदिर था गणेश जी का, और गणेश जी का जो पुजारी था ना मंदिर का, बहुत बड़ा मंदिर है, नामी ग्रामी मंदिर है, तो उसकी युगल ज्ञान में निकली। वो ज्ञान में आ गई तो उसको लगता था ये क्या गणेश की पूजा करता है, अरे गणेश के बाप को हमने पा लिया, बड़ा नशा था युगल को। तो उसको बार बार बोलती थी एक बार माउंट आबू चलो, माउंट आबू चलो। और भाई तो पक्का भगत, और उसका वही चढ़ावे का धंधा, और उसको सचमुच वो सिद्धि विनायक का मंदिर और सिद्धि प्राप्त हो गई थी। जिसको जो कह देगा उसको हो जाएगा। कई बच्चे की इच्छा से आते और वो बोल दे अगर हो जाएगा तो हो जाता, माना उसको सिद्धियां जैसे मंदिर से प्राप्त हो गई। अब उसको खूब चढ़ावा मिलने लगा, खूब अच्छी तरह से पैसे की आमदनी होने लगी। अब ऐसा भक्त ऐसी प्राप्ति हो, और हम लोग जो ज्ञानी आत्माएं हम बाबा के बच्चे अगर जाते हैं तो कोई कोई हैं जो दादी हम लोगों को सिखाती थी किसी मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना, कुछ न कुछ जेब में रखना, कुछ डालना जरूर, नहीं तो वो पुजारी लोग अंदर अंदर दुआ की बजाय बद्दुआ दे दे जी। टीका भी नहीं लगाते हैं फिर अंदर अंदर, मतलब रसम भले मालूम करेंगे लेकिन अंदर की जो भावनाएं वो टच तो होती है ना, ये व्यक्ति कुछ अलग चाहता है इसलिए कुछ दान कर दिया। तो उस मंदिर की बात सुनाता हूं। माता की बड़ी भावनाएं थी, उसको बहुत प्यार से समझा के ले आई यहां पर, मधुबन भेज दिया, उसने खुद नहीं आई पार्टी साथ भेज दिया। ऐसे शांतिवन में आया, उसका मन नहीं लगे, 3 दिन तक ऐसे ही इधर उधर भटकता रहा, ना क्लास किया ना कुछ किया। अब वो माता वहां योग लगा रही है कि बाबा कुछ तो अनुभव इसको करा के भेजना, कुछ अपना साक्षात्कार करा देना। वो वहां योग लगा रही है और यहां 3 दिन भटकता रहा। लास्ट में कहती, शाम को जब उसका जाने का टाइम था दूसरे दिन, कुछ तुमको मिला वहां क्या देखा? कहता मुझे कुछ पता नहीं, यहां तो कुछ नहीं मुझे मिला। अब और उसने रात को योग लगाना शुरू कर दिया कि बाबा कुछ तो अनुभव करा के भेजना, नहीं तो हमारा बंधन नहीं कटेगा। कहता उसको पता नहीं क्या हुआ, रात को 1:30-2 बजे नींद खुल गई, और जब वो नींद खुली, वो खुद मेरे को सुनाया उसने अनुभव अपना, जब नींद खुली तो सीधा वो तपस्या धाम है ना, वहां तपस्या धाम में वो चला गया, और तपस्या धाम में चलते ही उसको साकार में बाबा मिल गए, एकदम चैतन्य रूप में ऐसे बैठे मुस्करा रहे, आओ बच्चे, प्यार किया उसको, तुम जिसके भगत हो वही मैं हूं, ऐसे बाबा ने उसको बड़े अच्छे अच्छे अनुभव करा दिए। कहता है वो बस रोए जाए, 1-2 घंटा बैठा रहा, फिर उसकी बहनों ने टीचर्स ने ढूंढना शुरू किया, जाने का टाइम आ गया है, कहाँ गया वो? कहता बेमन उठाया वहां से जबरदस्ती मेरे को, मैं गाड़ी में बैठा, कैसे मैं इंदौर पहुंचा मुझे कुछ पता नहीं, लेकिन बाबा मुझे मिल गया। अब मैं भक्ति जरूर करता हूं, मैंने मंदिर नहीं छोड़ा है, पूजा करता है, लेकिन इतनी भावना से इतनी श्रद्धा से करता है। हमको अंदर ले गया, मंदिर में बिठाया, अब पूरा परिवार ज्ञान में आ गया। अभी कहता अभी मुझे चढ़ावाई नहीं चाहिए, अभी क्या करना, बाबा बहुत कुछ दे दिया, इतनी प्राप्तियां बाबा ने संगम ऊपर कराई हैं, क्या कामनाएं रखनी, किससे रखनी, हमको तो दो रोटी खानी है, प्रभु के गुण गाने हैं, पैसे के पीछे ठगी करना, चोरी करना, इच्छाएं रखना, इसकी जरूरत है क्या? इसलिए सब बहुत प्यार से, बाबा जो आपने मुझे प्राप्तियां कराई हैं, अथाह कराई हैं, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा, उसी निश्चय और नशे से रहो, किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है, ब्राह्मणों को कम खर्च वाला नसीन, जितना है उतना ही खर्चा हो, दिखावा नहीं करना, इसने इतना किया मैं भी इतना करूं, लोग मुझे क्या कहेंगे, अरे बाबा कहता लोग लाग छोड़ो, जो जितना बाबा ने दिया वो बहुत कुछ दिया है, तन की शक्ति है तो तन सेवा में लगाओ, मन की शक्ति है तो मन सेवा में लगाओ, धन की शक्ति है तो धन सेवा में लगाओ, जो बाबा ने शक्ति दी है बाबा तेरे काम में सफल हो जाए, और आप सफल करोगे तो उसके रिटर्न में कई गुना होकर के रिटर्न हो जाएगा। तो योग ही सिर्फ नहीं करना, लेकिन योग के प्रयोग करना, तन पर करो, खेती पर करो, अपने बिजनेस पर करो, अपने संबंधों पर करो, बाबा की किरणें ऐसे लो और ऐसे दो, और रोज नए नए ढंग से करो। आज ज्ञान सूर्य की किरणें ले रहे हैं, कल प्यार के सागर की किरणें ले रहे हैं, कल आनंद के सागर में डूबे हुए हैं, अरे वैरायटी ज्ञान दिया है, वैरायटी गुण है आत्मा के, सात गुण 7 दिन तक अभ्यास करके देखो, कभी प्रेम स्वरूप, कभी ज्ञान स्वरूप, कभी शांत स्वरूप, कभी सुख स्वरूप, तो रमणीकता रहेगी, नवीनता रहेगी, और पुरुषार्थ में कभी भी थकोगे नहीं, उड़ते रहोगे। तो मैं कह रहा था तीसरा जो स्वरूप है बाबा का बीज रूप, उस बीज से सारे वृक्ष को शक्ति मिल रही है। इतना वृक्ष जो आज चल रहा है भले पुराना हो गया है, जर्जरीभूत हो गया है, लेकिन बीज रूप बाबा के बच्चे हैं सब कुछ, कोई भी धर्म है कहीं भी निकला है, शाखाएं उपशाखाएं, उसका ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हमारा ब्रह्मा बाबा है, गॉडफादर शिव बाबा है, लेकिन ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, कभी इस पर विचार किया है, जितनी शाखाएं जितनी उपशाखाएं निकली हैं वो इसी एक वृक्ष के तने से निकली हैं, कोई शाखा से शाखा नहीं निकली है, इस्लाम इसी से निकला, बुद्ध इसी से निकला, क्राइस्ट इसी से निकला, संन्यास इसी से निकला, ऐसे नहीं क्राइस्ट से संन्यास निकल गया जाकर के, आदि सनातन देवी देवता धर्म जिसका स्थापक हमारा ब्रह्मा बाबा शिव बाबा है, उसके द्वारा धर्म की स्थापना हुई, और उसके बाद जो शाखाएं उपशाखाएं निकली वो हमारे इसी एक धर्म से निकली है। इसलिए सबके वंशज सबके पूर्वज हम हैं, इस पूर्वजपन के समान में बैठ करके योग करो कि मैं पूरे वृक्ष का पूर्वज हूं, इस सारी बिरादरी मेरी है, ऐसे नहीं मेरा कोई अलग कुल है, सारी बिरादरी चाहे वो जिस धर्म में चला गया है उन सब का मैं फादर हूं, मुझे इनको शक्ति देनी है, मुझे इनको सकास देनी है, मुझे इनको मदद करनी है, इनको परिवर्तन करने के लिए बल देना है, ये चेंज हो जाए, और जो इनको चाहना है वो पूरी हो जाए। क्या सभी चाहते हैं? मुक्ति, मुक्त हो जाए, और मुक्तिदाता हमारा बाबा है, आप मास्टर मुक्तिदाता बन करके सबको मुक्ति का वरदान दो, योग वैरायटी करो, सिर्फ शांत होकर के नहीं बैठो, और उस वैरायटी से आपको अनुभव होगा कितना रमणीय ज्ञान है, कितना मीठा ज्ञान है, कैसे बाबा ने अपने बच्चों को पढ़ाया है, तो भाग्य की स्मृति है, नवीनता है, और भिन्न भिन्न गुण और शक्तियों के अनुभव हैं, तो कभी पूर्वज स्वरूप में बैठे, कभी पूज्य स्वरूप में बैठे, कभी फरिश्ता बन करके उड़ रहे हैं, और कभी बीज बन करके सकास दे रहे हैं, वैरायटी है ना, तो वैरायटी और नवीनता करोगे तो रमणीकता रहेगी, और एक जैसा करोगे तो थक जाओगे। तो चलो अभी 7 बजने वाला है, योग करेंगे आधा घंटा ना, तो पहले हम कुछ समय के लिए बाबा का आह्वान करें, इसी सभा में बाबा से क्या बातें करेंगे, पहले सभी अपने अपने भ्रकुटी आसन पर बैठो, अपने मूल स्वरूप में स्थित होकर के अकाल तख्त पर चमकता हुआ मैं सितारा हूं, इस शरीर से न्यारा हूं। और बस यहां पर बैठ करके एकदम शीतलता का अनुभव करो, पवित्रता का अनुभव करो। और बाबा को कहो, बाबा ये आसन आपके लिए है और मैं आपके संग का अनुभव करना चाहता हूं। कहते हैं पारस के साथ लोहा लग करके भी पारस बन जाता है। अगर मैं था लोहा, अभी तो नहीं हूं, तो भी आप पारस हो, आप आ जाओ मेरे साथ, मैं आपके संग कंबाइंड हो जाऊं। तो बाबा का आह्वान करो, बाप दादा का आह्वान करो, एक तरफ बड़ी मां है, एक तरफ बाप है और मैं बच्चा बीच में बैठा हूं। कितना स्थान चाहिए बाबा को, कितना स्थान चाहिए बिठाने के लिए, बिंदु है ना। तो अपने लाइट बिंदु रूप में बैठ करके माता पिता के बिल्कुल बीच में जैसे बच्चा बैठा है, ऐसे बैठ करके उस शक्ति का अनुभव करो, उस पवित्रता का अनुभव करो, उस शांति का अनुभव करो, अनुभव के सागर में खो जाओ, तले में चले जाओ। अशरीरी स्थिति में बैठकर मैं एक लाइट माइट संपन्न एक चमकता हुआ सितारा, ज्ञान सूर्य परमात्मा की दिव्य शक्तियां वो पवित्र किरणी मुझ आत्मा को, मुझ सितारे को संपन्न बना रही। ज्ञान सूर्य की किरणों का अनुभव करो, पवित्रता की किरणी, शांति की किरणी, शक्ति की किरणी। मुझ आत्मा को संपूर्ण पावन बना रही है, सर्वशक्तियों से संपन्न बना रही है। वो पवित्र किरणें मुझ हीरे पर ऐसे पड़ रही हैं जो इस चारों ओर पूरे ग्लोब को शक्तियां प्राप्त हो रही हैं। ज्ञान सूर्य की किरणें लेते चलो और उन्हें फैलते हुए इस विराट रंगमंच को हर आत्मा को प्रकृति के सभी तत्वों को वो किरणें पावन बना रही हैं, शक्ति प्रदान कर रही हैं। परिवर्तन का महान कार्य संपन्न हो रहा है। अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप के सम्मान में स्थित हो जाओ। बीज रूप वृक्षपति बाप के साथ, माता पिता के मध्य बैठकर अपनी पूरी वंशावली को शक्तियों का दान करो। मुक्ति का वरदान दो। अपने महातपस्वी स्वरूप में इस सृष्टि के तमोगुण का नाश कर दो। अपने श्रेष्ठ सर्वोत्तम पुरुषार्थी के स्वरूप में सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूं। मेरे सर्व संबंध एक के साथ है। मेरा संसार एक बाबा है। सर्व संबंधों की स्क्रीन बाबा से मीठी मीठी रूह ध्यान करो। संगम युग पर सर्व प्राप्तियों से संपन्न भरपूर संतुष्ट मणि बनाया है। कितनी भाग्यशाली आत्मा, वाह मेरा भाग्य। भगवान की छत्र छाया के नीचे सदा सुरक्षित हूं। बाबा का वरदानी हाथ अपने मस्तक पर अनुभव करो।
अच्छा रहा सबका योग का अनुभव? अच्छा रहा, क्लास भी अच्छी रही? तो खास आपको लाभान्वित करने के लिए अपना अमूल्य समय निकाल कर आए भ्राता जी, आपका बारंबार शुक्रिया, आभार, धन्यवाद। और जैसे आपको बताया गया था, यहाँ पर भट्टी के ज्ञान योग के सत्र पूरे हुए, अभी अनुभव की लेन देन करेंगे। जब तक सुषमा दीदी हमारे बीच में पहुंचे, आप लोग काफी समय से बैठे हैं, अगर हाथ पैर हिलाने के लिए एक बार उठकर खड़े होना चाहते हैं तो भले खड़े हो जाएं, हाथ पैर हिला लें अपने। स्ट्रेचिंग कर ले हाथ पैर की। और दो दीदियों को जैसे कहा था, दो दीदियां आजू बाजू के संदली में आ जाएं,